जी किसकी बारी थी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल लज़ीना आमनू उज़्कुरु अल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन व असीला वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इला नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा इला आखिर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا. تو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، پیچھے سے جو بات چل رہی تھی وہ کیا تھی کہ احسانات الہیہ کو عموماً اور ایسے اکمل رسول کی بعثت کے احسان کو خصوصاً یاد کر کے اس کا یہ شکر ادا کرو، ٹھیک ہے نا؟ یا یعنی ان ساری باتوں کو تم یاد رکھنے کی کوشش کرو، اپنے ذہن میں استحضار رکھو اس کا، اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ شکر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو احسانات ہی اتنے کہ ہم شکر ہی کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے. تو شکر کرنے کا طریقہ کیا؟ فرمایا اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو. اس میں سب طاعات آ گئیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کثرت سے یاد کرنے کا مطلب کیا لکھا؟ طاعات، حکم ماننا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے یاد کا اصل مطلب. اور ہم تسبیح پھیر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، اور حکم کوئی نہیں مان رہے، یا بڑے بڑے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ ذکر نہیں کہلائے گا. تو فرمایا کہ اس ذکر و طاعت پر دوام رکھو، پس صبح و شام، یعنی علی الدوام. صبح و شام کا مطلب علی الدوام، یعنی ہمیشہ، یعنی کہ صرف صبح کو یاد کیا پھر بھول گئے، پھر شام آئی تو شام کو یاد کر لیا پھر بھول گئے، نہیں، بلکہ صبح و شام کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہو. وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، یعنی دل سے بھی اور اعضاء سے بھی اور زبان سے بھی. دل، اعضاء، زبان. دل سے ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت دھیان رہے دل کا، یعنی دل زندہ ہو، مردہ نہ ہو. کیا مطلب زندہ مردہ؟ بھائی مر جائے گا تو پھر مر ہی جائیں گے، ٹھیک ہے، زندہ ہی نہیں رہیں گے. تو دل مردہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دل جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس وجہ سے بیچارہ ذکر ہی نہیں کر پا رہا، اس کی آواز ہی نہیں نکل پا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل جو ہے وہ بوجھوں، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نہ ہو، اس میں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو نکالو، اپنے دل کو. تو دل سے ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور اعضاء سے، یعنی اعضاء سے صرف وہ کام کرو جو اطاعت والے ہیں، نافرمانی والے نہیں ہیں. اور اعضاء کے اندر زبان بھی شامل ہے، صرف ہاتھ پیر شامل نہیں ہے، اور بلکہ دماغ بھی شامل ہے، کہ دماغ سے بھی بیٹھ کر کے نافرمانی کے منصوبے نہ بناؤ. اور زبان سے بھی، تو زبان کو انہوں نے الگ بھی ویسے کر دیا ہے، لیکن زبان بھی اعضاء میں نہیں، ایکچولی زبان اعضاء میں، میں نے غلط کہا تھا. زبان جو ہے وہ اعضاء جو ہوتا ہے وہ سائڈس کی چیزوں کو کہتے ہیں، اور زبان جو ہے وہ سائڈس میں نہیں ہے، اس وجہ سے زبان کا تذکرہ الگ سے ہی ہوتا ہے. صحیح فرمایا، بے شک صحیح کہتے ہیں. زبان سے بھی، بس جملہ اولا سے عموم اعمال و طاعات کا، اور جملہ ثانیہ میں عموم ازمنہ و اوقات کا حاصل ہو گیا، عموم ازمنہ و اوقات کا، ٹھیک ہے؟ تو ذکرن کثیرہ کا مطلب کہ اعمال اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والے کرو ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ تو ذکرن کثیرہ کے اندر ہمیش کی آ گئی کہ کبھی بھی غفلت والے اعمال نہ کرو. اور یہ جو صبح اور شام والا تذکرہ آ گیا، تو صبح و شام سے مراد جو ہے وہ زمانے اور اوقات کا عموم، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی خاص وقت نہیں ہے ذکر کرنے کا، بلکہ جو ہے وہ اس کے اندر عموم ہے زمانے اور اوقات کا، 24 گھنٹہ ذکر. تو صبح شام جو کیا جاتا ہے نا، تو پھر حدیثوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ بھئی صبح شام کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے خاص طور پر، لیکن بیٹھا کرتے تھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اسی وقت ذکر کرتے تھے اور بعد میں ذکر نہیں کرتے تھے. اپنے معاملات کرنے کے لیے صبح شام کا وقت جو ہے وہ سیرت سے بھی مل جاتا ہے، اور یعنی سنت سے ملتا ہے صبح شام کو. اور یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں قرآن کے, تو الفاظ قرآن کو ظاہر کے اوپر محمول کریں تو صبح اور شام بیٹھ کر کے تسبیحات کر لیں. یعنی نہ تو ایسا کرو کہ کوئی حکم بجا لائے اور کوئی نہ بجا لائے, ٹھیک ہے, کہ کوئی حکم مانے کوئی حکم نہ مانے, ایسا نہیں کرو. اور نہ ایسا کرو کہ کسی دن کوئی کام کر لیا کسی دن نہ کیا, ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ کام بے شک تھوڑا کرو لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کرو, کیونکہ اس کے اندر زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کبھی کر کے چھوڑ دیا تو وہ چیز اچھی نہیں ہوتی. جیسا اس نے تم پر بہت احسان کیے ہیں اور آئندہ بھی کرتا رہے گا, بس بالضرورہ مستحق ذکر اور شکر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہوتے ہیں نا, وہ جو عمومی احسانات ہیں وہ تو ہمیشگی کے ساتھ ہے نا, ہمیشہ ہمیشہ ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری آنکھ آج کام کرتی ہے کل کام نہیں کرتی, ٹھیک ہے, ہمارے جو زبان ہے وہ آج کام کرتی ہے کل کام نہیں کرتی, اس میں تو ہمیشگی ہے. تو یہ عمومی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ دی ہیں. خصوصی نعمتیں میں کبھی کبھی کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن عموم کے اندر تو آگے پیچھے نہیں ہوتا نا بالکل بھی. تو اسی طرح سے اس کا شکر بھی جو ہے اس میں بھی عمومیت ہونی چاہیے, ہمیشہ بھی ہونی چاہیے. اچھا, جیسا اس نے تم پر بہت سے احسان کیے, اچھا, چنانچہ وہ ایسا رحیم ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے حکم سے اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں. هو الذی یصلی علیکم, علی الرسول نہیں, علیکم تمہارے اوپر, وہ ملائکتہ, ٹھیک ہے. تو یہ رحمتیں جو ہمارے اوپر ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کہ ہمارے سارے معاملات چلتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشگی کے ساتھ بھیجتے رہتے ہیں, ورنہ تو ہمارے مسئلے ہی نہ چلیں, ہمارے کام چلیں ہی نہ. اور اس سے پھر جو الٹیمیٹ فائدہ ہمیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ظلمات سے نکل کر کے نور میں ڈالے جاتے ہیں. تو اس کا فرمایا کہ اللہ کا رحمت بھیجنا تو یعنی اس کا رحمت بھیجنا تو رحمت کرنا ہے, اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا رحمت کی دعا کرنا ہے. جیسے کہ قال, جیسے کہ کما قال الذین یحملون العرش الی قوله, ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں اپنی کلاس میں کے تفسیر کی. فرشتوں کا رحمت بھیجنا رحمت کی دعا کرنا ہے, جیسے کہ اس قول نے فرمایا وقہم السیئات, ٹھیک ہے, جو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ ان کو گناہوں سے بچا کے رکھیے یا ان کو تکالیف سے بچا کے رکھیے, ٹھیک ہے. فرشتہ باقاعدہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور یہ رحمت بھیجنا اس لیے ہے تاکہ حق تعالی ببرکت اس رحمت کے تم کو جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں سے علم اور ہدایت کے نور کی طرف لے آئے, ٹھیک ہے. کیونکہ علم اور ہدایت کے نور کی طرف لانا جو ہے نا, یہ تدریجن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیجی اور ایک دم سے سارا کا سارا کہ ساری کی ساری ہدایت مل گئی, ٹھیک ہے, نہیں, یہ تدریجن ہوتا ہے. اور اس تدریجن ہونے کی وجہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا کوئی نقص نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ایک دم سے کسی کو کامل علم اور کامل ہدایت نہیں عطا فرما سکتی, نہیں, اللہ کی رحمت کی کمی نہیں ہے, بلکہ ہمارا جو سٹرکچر ہے نا, ہماری جو ساخت ہے, یہ اس کی کمزوری ہے کہ ہماری ساخت جو ہے وہ ایک دم سے اتنا بڑا بوجھ یا اتنی بڑی نعمت جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم تدریجن ہی پروگرس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تدریجن پروگرس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کی رحمت تو کامل آتی رہتی ہے لیکن ہماری پروگرس تدریجن ہوتی ہے. تو پھر تھوڑی ہدایت تھوڑی ہدایت تھوڑی ہدایت, تھوڑا اندھیرا کم تھوڑا اندھیرا کم تھوڑا اندھیرا کم اور اندھیرا کم اور اندھیرا کم, اس طرح سے ہم پوری ہدایت کے نور میں چلے جاتے ہیں اور اندھیرا جو ہے وہ مکمل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تدریجن, یہ ہماری ضرورت ہے تدریجن کی. یہ جیسے ایک اہم پوائنٹ تھا کہ یہ من الظلمات الی النور جو لکھا, تو یہ ایسے کیوں ہے کہ جی بھائی اللہ تعالیٰ ایک دم سے ہی جو ہے وہ ہمیں من الظلمات الی النور پہنچا دیں, تو سارے لوگ ایسے تو نہیں پہنچتے نا, کوئی بھی ایسے نہیں پہنچتا بلکہ. تو اس میں تدریجن معاملہ ہوتا ہے. تو تدریجن معاملہ اللہ کی رحمت کی کسی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, یا اللہ کی رحمت کا کوئی اس میں کمی نہیں, کوئی قصور نہیں ہوتا, بلکہ ہماری اپنی ساخت کا قصور ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے ایک دم سے تبدیلیاں. تو فرمائے کہ تاکہ حق تعالیٰ ببرکت اس رحمت کے تم کو جہالت و ضلالت کی تاریکیوں سے علم و ہدایت کے نور کی طرف لے آئے, یعنی خدائی رحمت اور دعائے ملائکہ کی برکت ہی برکت ہے کہ تم کو علم اور ہدایت کی توفیق اور اس پر ثبات حاصل ہے کہ یہ ہر وقت متجدد ہوتی رہتی ہے, یعنی ہر وقت اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے تمہارے اوپر علم اور ہدایت کی. ٹھیک ہے, یعنی تجدید سے مراد یہ کہ بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس کے اوپر جو ثابت تو ثبات کے لیے توفیق, یعنی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ توفیق پیٹرول, ٹھیک ہے نا, توفیق از ایکول ٹو پیٹرول. تو اگر گاڑی کسی راستے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, پیچھے نہیں جا رہی, ٹھیک ہے نا, تو کم از کم ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی ہوئی تو ہے, تو کھڑی ہونے کے لیے پیٹرول چاہیے ہوتا ہے. کھڑی ہونے کے لیے تو پیٹرول نہیں چاہیے ہوتا نا, رائٹ. تو لیکن ہمیں یہ بات پتا ہے کہ ہم کھڑے بھی پیٹرول کے بغیر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے پیٹرول کے بغیر؟ یعنی ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں, پیچھے نہ جائیں, اس کے لیے بھی ہمیں توفیق کے پیٹرول کی ضرورت ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری گاڑی پیٹرول کی ضرورت ہے. کیوں؟ کھڑے رہنے کے لیے پیٹرول کی کیوں ضرورت ہے؟ نفس و شیطان پیچھے کھینچتے ہیں. ہاں, اچھا جواب ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا جواب ہے, لیکن یہ جو پیچھے کھینچتے ہیں اس کو اگر سڑک اور گاڑی سے اس کو اگر آپ سملیٹیوڈ لیں, اس کا مماثلت لیں, تو کیا بنتا ہے؟ جو پیچھے کھینچنا ہے, اگر آپ فزیکل ورلڈ سے اس کو کریں, فرکشن تو نہیں کہتے اس کو, گریویٹی کہہ سکتے ہیں, گریویٹی. ٹھیک ہے, لیکن گریویٹی کہاں کھینچتی ہے؟ اگر فلیٹ سڑک ہو تو پھر تو گریویٹی نہیں کھینچتی نا, گریویٹی تو نیچے کھینچتی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے نا, یہ فلیٹ راستہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ لیول راستہ نہیں ہے, بلکہ یہ اوپر کی طرف جانے والا راستہ ہے. ٹھیک ہے, وَحَدَيْنَاهُن نَجْدَيْن, یہ اوپر کی طرف, یعنی یہ سلوپ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ اوپر کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اوپر کی طرف جانے کے لیے اگر آپ گاڑی کو بند کر کے کھڑے ہو جائیں نا, ٹھیک ہے, تو آپ کی گاڑی کھڑی نہیں رہے گی, بلکہ آپ کی گاڑی پیچھے جائے گی. ٹھیک ہے, نیچے جائے گی, گریویٹی اس کو پل کرے گی, یعنی نفس و شیطان اس کو نیچے کی طرف پل کریں گے. تو اس وجہ سے آپ کو انجن سٹارٹ رکھنا پڑے گا اور آپ کو اپنے ایکسیلیٹر کے اوپر پاؤں رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بے شک آگے نہ جا رہے ہوں, لیکن جسٹ ٹو مینٹین یور پوزیشن آپ کو انجن سٹارٹ رکھنے کی ضرورت پڑے گی, اور انجن سٹارٹ رکھنے کے لیے آپ کو پیٹرول چاہیے ہوگا. یعنی ایون جسٹ ٹو مینٹین یور سیلف ہمیں اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے. ہم اللہ کی توفیق کے بغیر مینٹین بھی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک گاڑی اگر سلوپ پر کھڑی ہوئی ہو تو وہ اس جگہ پر موجود رہنے کے لیے بے شک آگے نہیں بڑھ رہی لیکن پیچھے تو نہ جائے نا, اس کے لیے بھی اس کو پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ یہ راستہ فلیٹ راستہ نہیں ہے, یہ راستہ جو ہے نا یہ ڈھلوان والا راستہ ہے, یہ اونچائی والا راستہ ہے یا نیچائی والا, بھائی اونچائی کے اندر دوسری طرف جائیں تو نیچائی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ سلوپ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرمایا کہ توفیق اور اس پر ثبات حاصل ہے. तो ये जो अल्लाह ताला की रहमत और दुआए मलाइका है, इसी की वजह से हमें आगे बढ़ने की तौफीक भी मिल रही है और हमें खड़े रहने की तौफीक भी, यानी कायम रहने की तौफीक भी हासिल हो रही है कि ये हर वक्त मुतजद्दद होती रहती है, यानी ये मुस्तकिल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला मोमिनीन पर बहुत मेहरबान है, काना बिल मोमिनीना रहीमा। हालांकि मेहरबानी है ना कि हम कुछ कर तो नहीं रहे, बस हमने जो ईमान लेकर के आया है उसी के ऊपर अल्लाह ताला को हमसे इतना प्यार हो जाता है, अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनू वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन, ठीक है, कि बस अल्लाह ताला हमें पेट्रोल देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। और ये रहमत तो मोमिनीन के हाल पर दुनिया में है और आखिरत में भी वो मूरद रहमत होंगे, ठीक है, कि वहीं से रहमत का वरूद होगा हमारे ऊपर। चुनाचे वो जिस रोज अल्लाह से मिलेंगे, बल्कि मूरद रहमत यानी ईमान वाले जो हैं वो रहमत के मुस्तहिक होंगे, या उनके ऊपर रहमत वारिद होगी अल्लाह ताला की। मूरद इस्म ज़र्फ़ का सीगा, मूरदुन, ठीक है। तो फरमाया कि वो जिस रोज अल्लाह से मिलेंगे तो उनको जो सलाम होगा वो ये होगा, तहियतुहुम यौम तलकौनहु सलामुन। जिस दिन अल्लाह ताला से मुलाकात होगी उनकी, तो जो उनको जो सलाम होगा वो ये होगा कि अल्लाह ताला खुद उनसे इरशाद फरमाएगा, अस्सलामु अलैकुम, के अव्वलन खुद सलाम ही अलामत एजाज की है, फिर जबकि खुद अल्लाह ताला की तरफ से सलाम हो, कमा काला सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ठीक है। तो ये गोया अल्लाह ताला की तरफ से सराहतन ऐलान हो गया कि ये अल्लाह ताला सलाम करेंगे। और हदीस में है कि अल्लाह ताला खुद अहले जन्नत से फरमाएगा, अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो तुम्हारे ऊपर, रवाहु इब्न माजा वगैरह। और ये सलाम तो रूहानी इनाम है जिसका हासिल इकराम है, ठीक है, यानी ये जो इनाम अल्लाह ताला की तरफ से है ये इज्जत इकराम की वजह से होगा ईमान वालों की वहां पर। और आगे जिस्मानी इनाम की खबर बअनवान आम है कि यानी ये तो रूहानी इनाम हो गया कि अल्लाह ताला इज्जत फरमा रहे हैं। उसके बाद जिस्मानी इनाम क्या है कि अल्लाह ताला ने उन मोमिनीन के लिए उम्दा सिला जन्नत में तैयार कर रखा है, क्योंकि जन्नत में जो मोमिनीन जाएंगे ना तो वो उनकी सिर्फ रूहें नहीं जाएंगी, बल्कि उन रूहों को अल्लाह ताला एक जिस्म भी अता फरमाएंगे, जिस्म और रूह का मजमुआ जन्नत में जाएगा, सिर्फ रूह नहीं जाएगी। तो इस तरह से जन्नत की जो नेमतें हैं वो उनका जिस्मानी इनाम भी होगा, ठीक है, क्योंकि जिस्म वहां पर जाकर के फिर एंजॉय करेंगे, खाने खाएंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, राइट, ये सब तो जिस्मानी लज्जतें होंगी ना वहां पर। तो जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने तैयार करके रखा है कि इनके जाने की देर है, ये गए और वो मिला, ठीक है, तो वो सब इमीडिएटली उनको मिल जाएगा वहां पहुंचते एक साथ ही। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शख को खिताब है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुश्ते चंद मुतरिजीन के। मुश्ते क्या मतलब? मुश्त कहते हैं इंसान की मुट्ठी को, ठीक है, तो बस मुट्ठी भर चंद मोतरेजीन है, ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो चंद एतराज करने वाले जो हैं वो, उनके तान से आप मगमूम नहीं, आप परेशान ना हो, गमजदा ना हो, अगर ये सुफहा आपको ना जाने, ठीक है। अच्छा, ये जो ताने देने वाले होते हैं ना, ये कम होते हैं, ये नहीं कि काफिर कम होते हैं, काफिर तो बहुत होते हैं दुनिया में, काफिरों की तादाद ईमान वालों से ज्यादा ही होती है हमेशा, और आज भी हमेशा हमेशा की तरह आज भी ज्यादा है, लेकिन इनमें से कितने आपको एज एन इंडिविजुअल ताने दे रहे हैं, ये बहुत थोड़े होते हैं। बाकी काफिर अपने काम से काम रखते हैं, अपने रंग रलियों के अंदर मसरूफ होते हैं, वो उनको आपकी परवाह ही नहीं होती है। आपको कौन ताने देता है? जिनके साथ आपका डायरेक्ट ताल्लुक होता है, ठीक है ना, जिनको कि आपने दावत देने की कोशिश करी हो तो वो पलट के आपको ताने देते हैं, या जिनके साथ आपका कोई ऐसा मामला हो कि वो फिर आपको ताने देते हैं कि देखो ये कौन, ये तो बड़े नेक बनते हैं, देखो इनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चंद लोग होते हैं, तो ऐसे लोग ताने देते हैं, तो उनसे आप मगमूम ना हो। अगर ये सुफहा, सुफहा का मतलब कि ये जो यानी बेवकूफ लोग हैं, ठीक है, जैसे कि सूरह बकरा की बिल्कुल शुरू की आयात के अंदर है ना कि अंतुम, क्या है वो, कि असल में तो तुम लोग जो है वो सुफहा हो, ये लेकिन ईमान वालों को ये लोग कहते हैं सफी। तो अगर ये सुफहा आपको ना जाने तो क्या हुआ? अल्लाह इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यालमून, के असल में तो ये है सुफहा, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वहां पर। तो कहते हैं अगर ये सुफहा आपको ना जाने तो क्या हुआ, हमने तो इन बड़ी बड़ी नेमतों और रहमतों का जो कि खिताब मोमिनीन में मस्कूर हुई है, खिताब मोमिनीन में मस्कूर हुई है, आप ही को वास्ता बनाया है, नहीं, कितनी बड़ी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाई कि ये जितना कुछ मिल रहा है मोमिनीन को, इसका वास्ता, इसका सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ठीक है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ना होती ना, किसी को कुछ ना मिलता। अल्लाह ताला ने इस जात को पैसेज वे बनाया है, इस जात को जरिया बनाया है, वास्ता बनाया है। ठीक है, तो मशायख ने यहां तक लिखा कि रूहानी नेमतों का खाली वास्ता नहीं बनाया नबी अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला ने जिस्मानी नेमतों का भी वास्ता बनाया है। दुनिया के अंदर भी जो कुछ मिल रहा है ना, मादी दुनिया के अंदर, राइट, ये भी नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से मिल रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम को की जो जो यानी बुजुर्गी है ना, आप सल्लम की जो बड़ाई है, शान है ना, वो सही मानों में तो हम समझ ही नहीं सकते। हमारे हमारे यानी वहमो गुमान से बढ़ करके नबी अलैहिस्सलाम की शान है। तो फरमाया कि आप ही को वास्ता बनाया है, और आपके मुखालिफिन की सजा के लिए खुद आपका बयान काफी करार दिया गया है कि इनके मुकाबले में आपसे सबूत ना लिया जाएगा। बस इससे जाहिर है, यानी इनके मुकाबले में आपसे सबूत ना लिया जाएगा, यानी बस इससे जाहिर है कि आप हमारे नजदीक किस दर्जा यानी सबूत नहीं माना जाएगा, बस आपका जुबानी बयान ही काफी होगा इनके खिलाफ। ठीक है, कोई कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा आपसे कि कोई जी आप मटेरियल प्रूफ लेकर के आए, कोई वीडियो लेकर के आए, कोई इनकी रिकॉर्डिंग लेकर के आए, नहीं, बस आप जो कह देंगे हम आपकी बात पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करते। इससे जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजदीक किस दर्जा महबूब और मकबूल हैं। ठीक है, ये तो जैसे पूरी इस सूरत का मजमून ही है नबी अलैहिस्सलाम की शान। ठीक है, चुनाचे हमने बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शान का रसूल बनाकर भेजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या यो नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशिरं व नजीरा। ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के रोज उम्मत के एतबार से खुद सरकारी गवाह होंगे, क्योंकि उम्मत तो पूरी की पूरी है, काफिर भी उम्मत में शामिल है, ईमान वाले भी उम्मत में शामिल है, तो आप खुद जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से अपॉइंटेड गवाह होंगे कि आपके बयान के मुवाफिक उनका फैसला होगा। कमा काला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम। ठीक है, और जाहिर है कि खुद साहिब मामला को दूसरे फरीक अहले मामला के मुकाबले में गवाह करार देना, यानी जिसका मामला है उसको तो गवाह के तौर पर कोर्ट वाले एक्सेप्ट नहीं करते ना, गवाह तो थर्ड पार्टी को लेकर के आते हैं। ठीक है ना भाई, एक होता है जिसका मामला पेश हो रहा है, एक होता है जिसको के जिसके खिलाफ मामला पेश हो रहा है। ठीक है, तो गवाह कौन होते हैं? गवाह ना ये होता है ना वो होता है, बल्कि गवाह तो एक थर्ड पर्सन होता है, लेकिन कयामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम को खुद गवाह बनाया जाएगा। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम का अपना मामला है ये, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन लोगों ने गुस्ताखियां करी थी, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, तो आला दर्जे का इकराम और उलूए शान है जिसका कयामत के रोज जहूर होगा। और दुनिया में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात कमाल जाहिर हैं वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के बशारत देने वाले हैं और कुफार के डराने वाले हैं। आमतौर पर सबको अल्लाह की तरफ इसके हुक्म से बुलाने वाले हैं। ठीक है, दाइयन इल्लाही, यानी हर एक को जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाले हैं। और ये तबशीर और इंजार और दावत, ये तबलीगन है। ठीक है ना, ये सब काम नबी अलैहि सलाम के तबलीग का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि आप का असल काम क्या है? तबलीग, और तबलीग के अंदर तबशीर भी शामिल होती है, तंजीर भी शामिल होती है। ठीक है, और दावत और तबलीग भी शामिल होती है। और यूं खुद अपनी जात सिफात और कमालात और इबादात और आदात और गैर हा मजमूई हालात के एतबार से आप सरतापा नमूना हिदायत होने में बमंजिला एक रोशन चिराग के हैं। ठीक है ना, यानी क्या फरमाया आगे? व सिराजम मुनीरा। सिराज जो है वो चिराग को कहते हैं। ठीक है, चिराग क्या होता है? जिसके अंदर ईंधन होता है, फ्यूल होता है कुछ, राइट, तेल वगैरह होता है, और वो जल रहा होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे जलते हुए चिराग से तशबीह दी, यानी जिसका अपना एक ईंधन है और उस ईंधन के अंदर अल्लाह ताला ने यानी एक अपनी मोहब्बत की आग लगाई हुई है, और उसकी वजह से रोशनी निकल रही है उस चिराग के अंदर से। ठीक है, और ये रोशनी जो है वो क्या करती है, इसकी सिफत क्या है? मुनीरा। ठीक है, मुनीरा, मुनीर, मुनव्वर करने वाली, मुनीर। ठीक है, तो मुनव्वर करने वाली ये रोशनी है। अनारा युनीरु इनारतन फहुवा मुनीरुन। ठीक है, अनारा, अनार, यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो लाइटिंग स्टोर्स होते हैं ना, तो वहां पर लिखा होता है अनारा, ठीक है, ये लाइट्स को अरबी में अनारा कहा जाता है। तो अनारा युनीरु इनारतन फहुआ मुनीरुन, ठीक है, मुनीर मुनव्वर करने वाला, तो सिराजम मुनीरा ऐसा चिराग है जो कि मुनव्वर कर देता है पूरे जहान को। तो इसके वास्ते से है, यानी इस वजह से अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को एक रोशन चिराग की एग्जांपल दी, फरमाया कि आप सरतापा नमूना हिदायत होने में, सरतापा सर से लेकर के नीचे, नीचे से लेकर के पांव तक, सरतापा ता मीन्स तक, ठीक है, और पा मीन्स पाँव, तो सर तापा का ये मतलब होता है सर से लेकर पैर तक नमूना हिदायत होने में, बमंजिला एक रोशन चिराग के हैं कि आपकी हर हालत तालिबान अनवार के लिए, यानी जो लोग नूर के तालिब होते हैं उनके लिए, जो तालिब ही नहीं है तो उसको तो कुछ नहीं मिलता ना, तो तालिब अनवार के लिए सरमाए हिदायत है, बस कयामत में इन मोमिनीन पर जो कुछ रहमत होगी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इन सिफाते बशीर व नजीर व दाई व सिराज मुनीर के वास्ते से है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इन तमाम सिफात के वास्ते से ही मोमिनीन के ऊपर रहमत होगी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गम और परेशानी को अलग कीजिए, यानी अल्लाह ताला कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना हौसला अफजाई कर रहे हैं, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान कर रहे हैं कि ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन काफिरों की जो की तरफ से जो अजियत पहुंच रही है ना, इस अजियत का मदावा हो सके, ठीक है। कैसी बड़ी जबरदस्त किस्म की अल्फाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान करी हैं, ठीक है। तो आप बस मोमिनीन को बशारत दे दीजिए, वबशरिल मोमिनीना बिअन्न लहुम मिन अल्लाहि फजलन कबीरा, ठीक है, उस फजल कबीर के बारे में उनको बशारत दे दीजिए कि उन पर अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल होने वाला है, दुनिया की इन इन परेशानियों से और लोगों की बेरगबती से, ये जो सारी दुनिया जो है ईमान वालों को नो लिफ्ट कराती है ना, कि जी हम चाहते हैं कि जी लोग आ जाएं, दीन की तरफ आ जाएं, कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, अब किसी के पास जाते हैं उनको कहते हैं, कहते हैं जी बस मैं इतना मसरूफ हूँ कि मैं क्या करूँ, कोई कहता है कि जी जमाना इतना खराब है किसके पास टाइम है ये सब करने का, कोई कहता है कि जी बस मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं जो है वो बस अपने घर में बैठ करके ना एक कंप्यूटर या फोन के बटन को क्लिक करके जो है ना तफसीर की क्लास सुनने से माजूर हूँ, ठीक है ना, वो ऐसी माजूर होती हैं कि वो एक बटन क्लिक नहीं कर सकती अपने टच स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, फोन के ऊपर टच स्क्रीन के ऊपर एक दो बटन क्लिक करना, इससे वो माजूर होती हैं, इतनी बीमार होती हैं बेचारी, ठीक है। तो जाहिर है फिर इन सब चीजों से दिल घुटता है, ठीक है ना, दिल तंग होता है। तो फरमाया कि नहीं, आपके ऊपर बहुत फजल होने वाला है ईमान वालों के ऊपर, आप उनको इन ईमान वालों को बशारत सुना दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से काफिरों और मुनाफिकों को डराते रहिए, जिसको एक खास उन्वान से ताबीर किया है वो यह है कि काफिरों और मुनाफिकों का कहना ना कीजिए, ठीक है, वला तुतिउल काफिरीना वल मुनाफिकीना, ठीक है, दोनों का एक साथ जमा किया कि काफिर और मुनाफिक जो है ये एक ही जिन्स की चीजें हैं। वदा अदाहुम, अच्छा कि जिसको एक खास मानता, अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तो इम्कान ही ना था कि आप कुफार और मुनाफिकीन के कहने में आकर दावत तबलीग को छोड़ दें, लेकिन लोगों की तान और तशनी से बचने के लिए मुमकिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमली तबलीग में जो निकाह ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जरिए से मकसूद थी कोई सुस्ती करें, उसको कुफार का कहना मानने से ताबीर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो बहुत तफसील के साथ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और इन काफिरों और मुनाफिकों की तरफ से जो कोई ईजा पहुंचे, अजा मतलब अजियत, जैसा इस निकाह में कि तबलीग फेली ही ईजाए तबलीग फेली ही ईजाए कौली पहुंची, ऐसे ईजाए ईजाए कौली पहुंची है, तो ये जो निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तो इससे जो है ना वो ईजा पहुंचने का ये जाहिरी सबब बना, तो इसका ख्याल ना कीजिए और फेली ईजा का भी अंदेशा ना कीजिए। अच्छा, कि ये क्या है कि जैसा इस निकाह में किस तबलीग फेली है ईजाए कौली पहुंची, ठीक है, तो ईजाए कौली पहुंची, और अगर कोई फेली ईजा भी पहुंचती तो उसका भी अंदेशा ना कीजिए। यानी लोग अगर आपको होता ना कि घर के ऊपर आकर के जो है वो दरवाजा बजाना शुरू कर देते कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, या ये जो है वो बाहर से जो है वो चीजें फेंकना शुरू कर देते घर के अंदर कि तुमने ऐसा गलत काम किया है, हम तुम्हें पत्थरों से संसार कर देंगे। तो अगर कोई फेली ईजा भी पहुंचती है ना तो उसका भी अंदेशा ना कीजिए। लेकिन फेली ईजा तो पहुंची नहीं थी, जुबानी ईजा पहुंची थी। और अगर इसका वसवसा आए तो अल्लाह पर भरोसा कीजिए, और अल्लाह काफी कारसाज है, वो जरर से कोई जाहिरी जरर पहुंचता है वो बातिनन नफा ही होता है, वो वादा किफायत तो वकालत के मुनाफी नहीं है। यानी कफा बिल्लाही वकीला का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपकी हर चीज जो है ना वो दुनियावी तौर से भी कामयाब होगी, ठीक है? नहीं, दुनियावी तौर पे कामयाब होना जो है ना ये अल्लाह ताला की मर्जी के ऊपर मौकूफ है कि जिसको हिदायत देना चाहे वही आपकी बात मानेगा, ठीक है ना? नबी अलैहिस्सलाम अगर इस तरह से देखा जाए तो नाउज़ुबिल्लाह नाकामी के अल्फाज तो बेअदबी हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को कितनी कोशिश करी ईमान पर लाने की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई ना, ठीक है? उसी तरीके से कितने लोग जो थे उनको दावत तबलीग करी लेकिन वो नहीं मान करके दिया, तो दुनियावी तौर पर तो कामयाबी नहीं हुई, लेकिन हर दावत तबलीग के अमल के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को उखरवी कामयाबी, रूहानी कामयाबी तो मिलती रही, ठीक है? तो कोई अगर बेवकूफ इंसान देख करके कहे कि नहीं भाई ये अल्लाह की वकालत कैसी वकालत है, इस ऐसी वकालत का क्या फायदा, नाउज बिल्ला, कि चचा के मामले में कामयाबी नहीं हुई, अपने पड़ोसियों के मामले में कामयाबी नहीं हुई, इतने सारे दूसरे सरदारों के मामले में कामयाबी नहीं हुई, तो उसको बेवकूफी समझा जाएगा और ये कहा जाएगा कि भाई ये कामयाबी, ये वाली कामयाबी है ही नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारा पूरा का पूरा जो मामला है वो दुनिया के साथ है, तो तुम दुनिया ही में हर चीज तलाश करते फिरते हो, लेकिन ईमान वालों का तो ये मामला नहीं होता ना। मारूफ मसाइल में फरमाते हैं, बल्कि जरा एक नोट किएगा, एक दो मिनट नोट किएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसानी से बचने के लिए हिदायत के ज़िमन में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का किस्सा और इसकी मुनासबत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीयीन होना बयान हुआ है, ठीक है? कि भाई नबी अलैहिस्सलाम किसी के बाप नहीं है, ज़ैद के भी बाप नहीं थे, ठीक है, बल्कि खातमुन नबीयीन है। तो ये पूरा मामला हो गया। आगे भी आप की सिफात कमाल का बयान आने वाला है, और आप की जात और सिफात सब मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है, तो कैसे? हम तो जी तबलीगी जमात में जब जाते हैं तो क्या सुनते हैं कि हिदायत सबसे बड़ी नेमत है, ठीक है, हिदायत सबसे बड़ी नेमत है, राइट, यही सुनते हैं, और बाकी है भी ऐसे ही, हिदायत सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन जो मुहक्किकीन होते हैं वो देखते हैं कि भाई हर चीज की कोई प्रीरिक्विजिट्स भी तो होते हैं ना, हर चीज के बैकग्राउंड पे भी तो कुछ होता है ना, तो बैकग्राउंड को भी तो देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज जो है वो किसी पर डिपेंडेंट हो तो उस चीज से ज्यादा बड़ी नेमत तो उसके जिस चीज पर वो डिपेंडेंट है वो हुई ना, ठीक है? तो हिदायत जो है वो तो सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन हिदायत का वास्ता कौन है, वसीला कौन है, सबब कौन है, वो नबी अलैहिस्सलाम की जात है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की जात हिदायत से भी बड़ी नेमत हुई, ठीक है? अब इस नेमत, ये बड़ी नेमत बनी क्यों? क्योंकि इस नेमत के जरिए से हमें हिदायत वाली नेमत मिल रही है, ठीक है? तो इस वजह से अगर हम वास्तों को भूल जाए ना, वास्तों को भूल जाए, तो इससे जो है ना फिर बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है? इस वजह से नेमत को तो याद रखें, ठीक है, लेकिन नेमत के वास्तों को भी याद रखना जरूरी, ठीक है? नेमत के वास्तों को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है? यहाँ पर ये पॉइंट है कि नेमत को खाली बड़ा कहना ये तो अच्छी बात है, ठीक है, कि बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी है, कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है, लेकिन वास्ते को भी याद रखें, प्री रिक्वेस्ट को भी याद रखें, ठीक है? तो फिर जो है ना इस नेमत की हिफाजत करना आसान हो जाता है, ठीक है? क्योंकि फिर वास्तुओं की भी आप कदर करते हैं ना, जब आप वास्तुओं की कदर करते हैं ना तो उस तरीके से नेमत की भी कदर हो जाती है, ठीक है? वास्तु को जो भूल जाता है ना और सिर्फ नेमत को याद करता है कि हाँ बड़ी अच्छी नेमत है, बड़ी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बड़े बहुत बड़ी, ठीक है। तो इससे नेमत की कदरदानी तो वो कर लेता है लेकिन नेमत की हिफाजत नहीं हो पाती है, ठीक है। बिकॉज नेमत की हिफाजत के लिए नेमत की सोर्स की कदरदानी करनी पड़ती है। लिखने के लायक पॉइंट है, वैसे तो आप लिख लेंगे तो अच्छी बात है। नेमत की हिफाजत के लिए नेमत की सोर्स की भी कदरदानी करनी पड़ती है। अच्छा, आगे फरमाया कि इनका शुक्र अदा करने के लिए आयत मस्कूरा में जिक्रुल्लाह की कसरत का हुक्म दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जिक्रुल्लाह की कसरत का मतलब क्या था भाई, यहां पर तो बात हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सिफात, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सिफात सब मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी नेमत है, ठीक है। तो अब जिक्रुल्लाह की कसरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सिफात की कदरदानी, इन दोनों में क्या तद्दीक है? क्योंकि बजाय तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला का जिक्र, ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सबसे बड़ी नेमत है, तो फिर ये कहना चाहिए था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहना चाहिए था कि उनका शुक्र अदा करने के लिए आयते मस्कूरा में जिक्र नबी की कसरत का हुक्म दिया गया। तो जिक्रुल्लाह की कसरत का हुक्म क्यों दिया गया? जिक्रुल्लाह की कसरत का नबी अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी नेमत मानने से क्या ताल्लुक है? इसका क्या जवाब अगर कोई आपसे पूछे जी ये क्या बात हुई? जिक्रुल्लाह का मतलब क्या है जी, क्या मतलब है जिक्रुल्लाह का? जी जिक्रुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह की अताअत करना। तो अल्लाह की अताअत का नबी अलैहिस्सलाम की जात सिफात सब सब मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। भाई ये दोनों जुमले ना, इन दोनों का जोड़ नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो अभी तक वही जवाब दे रही हैं जो कि आपको नहीं देना चाहिए था, अल्लाह की अताअत करना। तो जवाब देना, इन दोनों जुमलों का जोड़ कैसे बनेगा? जिक्रुल्लाह का असल मतलब क्या है? अल्लाह की अताअत करना। चलें, अब मैं आपकी आसानी के लिए एक और सवाल कर देता हूं, अल्लाह की अताअत करने का क्या मतलब है? जी जी अगर इस सवाल का आपने सही जवाब दे दिया तब इन दोनों जुमलों का जोड़ बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। जी, नबी की अताअत करना, नबी की अताअत करना, अल्लाह की अताअत करने का मतलब क्या है? नबी की अताअत करना। और आपने जो कहा है ना, ये इसमें वही गैर मुकल्लदियत घुसी हुई है अभी तक इसके अंदर, ठीक है। कुरान और रसूल की अताअत करना, ये क्या है? गैर मुकल्लदियत इसके अंदर घुसी हुई है अभी तक उसका पोर्शन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। भाई कुरान क्या है, कहां से मिला आपको? कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लाकर के आपको दिया था, इसराफील अलैहिस्सलाम ने लाके दिया था, या मूसा अलैहिस्सलाम ने लाके दिया था? किसने लाके दिया था कुरान? कुरान किसने ला, किसने आपको बताया कि मैं जो कह रहा हूं ये कुरान है? किसने कहा कि ये कुरान है ये कुरान नहीं है? ये सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से मिला, सब कुछ कुरान और रसूल इज द सेम थिंग, ठीक है। रसूल ने जो कहा वही कुरान है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कुरान नहीं है तो वो कुरान नहीं है, ठीक है। सब कुछ का वास्ता अल्लाह ने रसूल को बनाया, अल्लाह ताला चाहते तो रसूल को बाईपास करके भी कुरान पहुंचा सकते थे कि नहीं पहुंचा सकते थे? बाईपास समझते हैं ना, बाईपास, बाईपास क्या करने का क्या मतलब होता है कि भाई इस रास्ते से भी कुछ जा रहा है लेकिन बाईपास से भी कुछ जा रहा है। अल्लाह ताला चाहते तो कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास करके भी पहुंचा सकते थे हम तक, अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो अल्लाह की अताअत करने का मतलब है नबी की अताअत करना, ठीक है। वो जो बता रहे हैं उसी को मानना, जो कह रहे हैं कि ये कुरान है उसको कुरान मान लो, जिसको कह रहे हैं कि ये कुरान नहीं है उसको कुरान नहीं मानो, ठीक है ना। सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ही तो समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। किताबों से बाहर निकलें, ठीक है, ये किताब को जो अंदर अभी तक घुसेड़ा हुआ है ना, ये इससे बाहर निकलें, ठीक है। ये शख्सियत, अल्लाह ताला ने शख्सियत को वास्ता बनाया है, कोई किताब बगैर शख्सियत के नहीं आई है, ठीक है। शख्सियत ला करके दे दी थी अल्लाह ताला ने, अपने आप को कभी भी जाहिर नहीं किया, ठीक है। बनी इसराइल जो है वो कोहे तूर पे पहुंच गए थे कि जी हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने नहीं दिखाया अपने आप को, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको भी अपने आप को नहीं दिखाया, हालांकि उनको बुला भी लिया था, ठीक है, पहुंच भी गए थे, अल्लाह ताला ने अपने आप को दिखाया ही नहीं उनको। तो क्या दिखाना, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपने आप को नहीं दिखाया, ठीक है ना। लम तरानी, तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकते, ठीक है। तो रसूल को वास्ता बनाया, हर चीज का वास्ता बनाया, ठीक है। तो असल में अल्लाह की अतात जो है वो रसूल की अतात है। जब ये बात आपके समझ में आ गई तो इन दोनों जुमलों का जोड़ बन गया, ठीक है। क्योंकि एक पहला जुमला कह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सिफात सब मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है, ठीक है। उसके बाद फरमाया कि इनका शुक्र अदा करने के लिए आयत मस्कूरों में जिक्रुल्लाह की कसरत का हुक्म दिया गया। जिक्रुल्लाह का मतलब है नबी अलैहिस्सलाम की अतात करना, ठीक है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम की अतात करेंगे ना, यही है कि नबी अलैहिस्सलाम की कदरदानी कर रहे हैं। ये जो आपको हिदायत मिल रही है ऐ ईमान वालों, तुम लोगों को जो हिदायत मिल रही है इसके वास्ते की कदरदानी करना, ये वास्ता हमने किसको बनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। कुरान क्या है, कुरान वास्ता नहीं है, कुरान तो सोर्स है, अल्लाह ताला का कलाम है, ठीक है। अल्लाह ताला का कलाम है, ये अल्लाह की सिफत है कुरान, अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है कुरान। अगर मखलूक होता ना कुरान तो कुरान वास्ता बन जाता, ठीक है। अगर मखलूक होता तो नबी अलैहि सलाम मखलूक है, मखलूक है, कुरान अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला का कलाम है, ठीक है ना। कलाम और सिफत अलग चीज होती है और मखलूक अलग चीज होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने वास्ता मखलूक को बनाया है, अपनी किसी सिफत को वास्ता नहीं बनाया, मखलूक को वास्ता बनाया। और मखलूक कौन है, नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। बात समझ में आई जी हुदा साहब, आपको समझ में आई, बाकियों को भी सबसे पूछूं, फर्क समझ में आता है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जिक्रुल्लाह ऐसी इबादत है कि जिसके लिए कोई शर्त नहीं है और इसके बकसरत करने का हुक्म है। या अय्युहल लज़ीन आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। हजरत इब्ने बास ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जिक्रुल्लाह के सिवा कोई ऐसी इबादत आयद नहीं करी कि जिसकी कोई खास हद मुकर्रर ना हो। नमाज 5 वक्त की और हर नमाज की रकात भी मुतय्यन है, रोजे माह रमजान की मुतय्यन और मुकर्रर हैं, हज भी खास मुकाम पर खास अमाल मुकर्रर का नाम है, ज़कात भी साल में एक ही मरतबा फर्ज होती है, मगर ज़िक्रुल्लाह ऐसी इबादत है कि ना इसकी कोई हद और तादाद मुतय्यन है, ना कोई खास वक्त और जमाना मुकर्रर है, ना इसके लिए कोई खास हैयत के भाई एक खास अंदाज से आपने बैठना है तभी आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, या कयाम या नशिस्त की मुकर्रर है, ठीक है, कि खड़े होकर के जिक्र कर सकते हैं या बैठ के जिक्र कर सकते हैं, ना उसके लिए ताहिर और बावजू होना शर्त है, ठीक है। आपको पाकीज आप हैज की हालत में भी जिक्र कर सकते हैं, आप निजासत की हालत में भी जिक्र कर सकते हैं, और बावजू होना भी शर्त नहीं है। हर वक्त हर हाल में जिक्रुल्लाह बकसरत करने का हुक्म है। बकसरत का मतलब ये कि 50% से ज्यादा अपने औकात के अंदर, एटलीस्ट 50%, यानी एक्चुअली एटलीस्ट 51%, ठीक है, इतना जिक्र में होना चाहिए, यानी इससे कम जो है ना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सफर हो या हजर हो, तंदुरुस्ती हो या बीमारी हो, खुश्की में हो या दरिया में हो, रात हो या दिन हो, हर हाल में जिक्रुल्लाह का हुक्म है, यानी अल्लाह ताला से कभी भी गाफिल नहीं रह सकते। क्या मतलब है इसका, अल्लाह ताला से कभी भी गाफिल नहीं रह सकते, इसका मतलब ये है कि कभी भी गुनाह की इजाजत नहीं है। जिक्रुल्लाह का मतलब है ताअत करना, ताअत का मतलब है नाफरमानी ना करना, मतलब ये है कि नाफरमानी की एक लम्हे के लिए भी इजाजत नहीं है, ठीक है ना, एक सेकंड के लिए तो क्या, एक लम्हे के लिए भी इजाजत नहीं है नाफरमानी करने की, नैनो सेकंड के लिए भी नाफरमानी की इजाजत नहीं है। पीछे हम पढ़ चुके हैं ना कि जो अजवाज मुतहरात के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, कि अगर तुम नाफरमानी करोगी ना तो तुम्हारे ऊपर दुगना अजाब आएगा, और अगर तुम नेकियों में तीन नेकियां, ठीक है, तीन तरह की नेकियों का जिक्र आया था कि ये करोगी फिर ये भी करोगी फिर ये भी करोगी तो फिर तुम्हारे ऊपर जो है ना वो डबल तुम्हें सवाब मिलेगा। तो उसमें क्या लिखा था तफसीर के अंदर कि सवाब के लिए तो बहुत सारी आपको शर्तें होती हैं, ठीक है, वो करेंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन नाफरमानी जो है वो एक भी अलाउड नहीं है, एक नाफरमानी भी अलाउड नहीं है, एक भी करोगी डबल अजाब मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसके तर्क में इंसान का कोई उजर मसमू नहीं है, यानी मसमू का मतलब नहीं सुना जाएगा। समिया यस्माउ का इसम मफूल है मसमून, ठीक है ना, नथिंग विल बी हर्ड, कि जी मैं तो मसरूफ थी और मेरे ऊपर तो इतनी मजबूरियां थी और मैं तो बच्चों में बिजी रहती थी या मैं तो इधर बिजी रहती थी, इस वजह से मैं गफलत में रही, नहीं, गफलत में रहने का कोई उजर है ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, इन रियलिटी गुनाह का कोई उजर नहीं है, के अक्लो हवास ही ना रहे, बेहोश हो जाए, तो बेहोश हो जाए तो फिर उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरी इबादात में बीमारी और मजबूरी के हालात में इंसान को माजूर करार देकर इबादत में इख्तिसार और कमी या मुआफी की रुख्सतें भी हैं, मगर जिक्र अल्लाह के लिए अल्लाह ताला ने कोई शर्त नहीं रखी है, इसलिए इसके तर्क में किसी हाल कोई उजर मसमू भी नहीं है, और इसके फजाइल और बरकात भी बेशुमार है, यानी करने का फायदा भी है। ये नहीं कि जी मजबूरी है कर रहे हो तो कोई एहसान को थोड़ी कर रहे हो हमारे ऊपर कि हम तुम्हें जो है उसके ऊपर इनामात दें, नहीं, तुम करोगे तो हम इसके ऊपर खूब तुम्हारे ऊपर फजाइल और इनामात भी करेंगे, और नहीं करोगे तो फिर यानी सजा भी मिलेगी, क्योंकि नहीं करने का मतलब जो होता है वो गुनाह करना होता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बतला दूं जो तुम्हारे सब आमाल से बेहतर और तुम्हारे मालिक के नजदीक ज्यादा मकबूल है और तुम्हारे दर्जात बुलंद करने वाली है और तुम्हारे लिए सोने चांदी के सदका और खैरात से बेहतर है, और इससे भी बेहतर है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो और तुम्हारा दुश्मन से मुकाबला हो, तुम उनकी गर्दने मारो और वो तुम्हारी गर्दने मारे। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी चीज और कौन सा अमल है? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिक्रुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, यानी अल्लाह ताला की याद। ठीक है, तो अल्लाह ताला की याद जो है यानी अल्लाह की अताअत में जिंदगी गुजारना। ठीक है, चाहे तुम घर में रहने वाली कोई यानी एक आम औरत जो कि बाहर का कोई भी काम नहीं कर रही, ठीक है ना, ना हज कर रही है, ना उमरे कर रही है, ना जो है वो दावत तबलीग के लिए घर से बाहर निकल रही है, ना जो है वो चैरिटी के कामों के अंदर उसका कोई अमल दखल है, और जिहाद तो वैसे भी औरतों के ऊपर नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रही, घर में रह रही हो, अगर अल्लाह की याद के साथ रह रही हो, यानी घर के अंदर रहते हुए तुम गुनाहों में मुलव्वस नहीं हो रही। और गुनाह क्या होते हैं आज के दौर के अंदर? तो बड़े बड़े गुनाह होते हैं जो घर के अंदर हो जाते हैं, राइट, सेलफोन के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से, फोन के जरिए से बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं। लेकिन अगर सेलफोन इंटरनेट ना भी हो घर के अंदर तो भी घर वालों से झूठ बोलना, ठीक ना, ये एक ऐसा गुनाह है कि जो कि इतना आम है कि अब गुनाह की तारीफ में से ही निकल गया है, झूठ बोलना। ठीक है, उसी तरीके से यानी बुरी बातें जुबान के ऊपर लाना या किसी के साथ जो है वो जुल्म करना, ज्यादती करना, उल्टी सीधी बातें करना, ठीक है, तो ये सब जो है वो जिक्रुल्लाह की नफी है। ठीक है, और अगर तुम ये सब कुछ भी नहीं कर रही बल्कि अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के ताल्लुक में कमी आ जाने के खौफ की वजह से तुम जो है वो एक यानी गुनाहों से बच के जिंदगी गुजार रही हो, इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी नहीं कर रही उन जाहिरी अमाल में से, लेकिन तुम जाकिर हो, तुम जाकिरा हो। ठीक है, तो ये है जिक्र का असल मफहूम। नीज इमाम, और ये चीज जो है वो तुम्हें वो फजीलतें फरमा देगी जो कि ये अमाल के साथ मशरूत नहीं है। ठीक है, बगैर अमाल के ये फजीलतें मिल रही हैं। नीज इमाम अहमद रहमतुल्लाह और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है कि हज़रत अबू हुरैरा तआला ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ सुनी है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ता, वो ये है, अल्लाहुम्मा जअलनी अअज़्ज़िमु शुक्रका व अत्तबिउ नसीहतका व उकसिरु ज़िक्रका व अहफ़ज़ु वसीयतका। इतनी अच्छी दुआ है कि या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरा शुक्र बहुत करूं, अज़्ज़िमु शुक्रका, और तेरी नसीहत का ताबे रहूं, और तेरा जिक्र कसरत से करूं, और तेरी वसीयत को महफूज रखूं। ठीक यानी जो तूने वसीयतें करी हैं मुझे कि ऐसे करो ऐसे करो, तो मैं उनको उनकी हिफाजत करूँ, ठीक है। जिन वालिदैन की औलादें हिफ्स कर रही हैं, ठीक है, तो उनको अपनी औलादों के अंदर ऐसा यानी सोच पैदा कर देनी चाहिए कि तुम जो कुरान का हिफ्स कर रहे हो ना, इसका मतलब सिर्फ तुम कुरान के अल्फाज का हिफ्ज मत समझना कि तुम कुरान के अल्फाज को हिफ्ज कर रहे हो, बल्कि हाफिज तुम उस वक्त कहलाओगे अल्लाह के नजदीक, हाफिज उस वक्त कहलाओगे जब कुरान के अहकाम की हिफाजत करने वाले बनोगे, ठीक है ना। और अगर तुम कुरान के अल्फाज की हिफाजत करने वाले बन गए, दुनिया वाले तो तुम्हें हाफिज समझ लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें उस वक्त तक हाफिज नहीं समझेंगे जब तक कि तुम अहकाम की हिफाजत नहीं कर रहे हो। अगर तुम गुनाह में मुबतला हो रहे हो, गंदी चीजें देख रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो तुम हाफिज कुरान नहीं हुए, बल्कि तुम तो कुरान के सारे खोए, सारे कुल कुरान है, कुरान से चोरी करने वाले, सारे को मिनल कुरान हाफिज तो ना बने ना, ठीक है। तो ऐसे जो है ना, बच्चों की जहन साजी करने की जरूरत है कि वो वाकई हाफिज कुरान बने। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इसकी दुआ की कि जिक्रुल्लाह की कसरत की तौफीक अता हो। तो नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई है ना, तो हम उन दुआओं के अल्फाज की हाइट तक पहुंच ही नहीं सकते अपनी तरफ से। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ही को इस्तेमाल करना जो है ना, वही सबसे ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। इतने अच्छे अल्फाज हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, हमारी सोच ही नहीं जा सकती। ऐसी भी चीजें भी मांगी जा सकती है अल्लाह ताला से, ऐसी भी मांगी जा सकती है, मांगा जा सकता है। इसमें रसूल ठीक है, तो एक अरबी ने रसूल से अर्ज किया कि इस्लाम के अमाल और फराइज और वाजिबात तो बहुत से हैं, आप मुझे कोई ऐसी मुख्तसर जामे बात बता दें कि मैं उसको मजबूती से इख्तियार कर लूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यजालु लिसानुका रक्बम रक्बम बिज़िक्रिल्लाह तआला, यानी तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तरोताजा रहनी चाहिए, ठीक है। उसको लिसानी जिक्र की तलकीन कर दी कि जुबान में बेकार की बातें, झूठ और गीबत और जो ना जानी होता है, तो उसको तुम अपनी जुबान पर मत लाओ, बल्कि जो ऐसे औकात हो ना कि जिस औकात के अंदर तुम्हें कोई जरूरी बात नहीं कहनी है, काम की बात, जैसे कि बीवी बच्चों से बात करना है, माँ बाप से बात करना है, कारोबार के लिए बात करना है, तो ऐसे वक्त में तुम्हारी जुबान जो है अल्लाह के जिक्र में लगी रहे, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अब बीवी बच्चों से बातचीत करना छोड़ दो, तुम्हारी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे का मतलब ये नहीं कि बीवी बच्चों से बात ना करो, माँ बाप से बात ना करो, कारोबार के लिए बात ना करो, उस्ताद से बात ना करो, तालिबे से बात ना करो, बल्कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते रहो, ये मतलब नहीं है ना, ठीक है। उम्मीद है कि सबको बात इत्तफाक होगा इस बात से। तो फिर मतलब क्या है, इनके अलावा जितने वक्त हैं उनके अंदर तुम बुरी बात करने की बजाय अच्छी बात करो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, सुभान अल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, ये है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़्कुरुल्लाह तआला हत्ता यकूलू मजनून, यानी तुम अल्लाह का जिक्र इतना करो कि देखने वाले तुम्हें दीवाना कहने लगे। क्या मतलब कि भाई अल्लाह का जिक्र करने से दीवाना कैसे बन जाता है इंसान, ठीक है। तो दीवाना बनने का मतलब यहाँ पर यह लिया जाएगा कि अल्लाह का जिक्र जब इंसान करता है ना, तो जमाने के साथ वो नहीं चल पाता, ठीक है ना, क्योंकि जमाना जो है वो गुमराही की तरफ लेके जा रहा होता है इंसानों को, है। एक मिनट जरा मुझे दे, बहुत साफ हो गया। तो जमाना जो है ना वो ऐसे काम कर रहा होता है कि जो कि गुनाह के काम होते हैं, लाजानी काम होते हैं, तो अल्लाह का जिक्र करने वाला उनके उनके साथ यानी कदम ब कदम नहीं चल सकता, नहीं चल पा रहा होता, ठीक है। तो इस वजह से दुनिया वाले उसको दीवाना कहना शुरू हो जाते हैं, मजनून कहना शुरू हो जाते हैं, पागल हो गया, दीवाना हो गया है, इसको जमाने का ख्याल नहीं है, ये लोगों से मुख्तलिफ हो गया है, ये हटखट के रहना शुरू हो गया है, ये बातचीत नहीं करता, ये महफिलों में नहीं जाता, ये दावतों में इतना शरीक नहीं होता, राइट। तो उसको दीवाना कहना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह का जिक्र इतना करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े फाड़ करके जो है वो उल्टे सीधे, ठीक है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर तआला से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग किसी मजलिस में बैठे जिसमें अल्लाह का जिक्र ना आए, तो कयामत के रोज ये मजलिस उनके लिए हसरत साबित होगी। وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. صبح اور شام سے مراد یا تو تمام اوقات ہیں یا پھر صبح اور شام کی تخصیص اس لیے ہے کہ ان اوقات میں ذکر اللہ کی تاکید بھی زیادہ ہے اور برکت بھی، ورنہ ذکر اللہ کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص اور محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کسی کو پتا ہے یہ صبح اور شام کے جو اوقات ہیں تو اس کے اندر زیادہ برکت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اسی کے اوپر خان میں آج کی کلاس ختم کر دیں گے اگر آپ اس کا جواب دے دیں. بتانا ہوگا جی صبح اور شام کے اندر خاص برکت کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ لکھی ہے شاید نے. نہیں پتا، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے نا دنیا والوں کے اوپر، ٹھیک ہے، چاہے نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہو، چاہے جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہو، ٹھیک ہے، تو دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کے مقامات ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رحمت کا نزول کس شکل میں ہوتا ہے؟ یہ کس شکل میں رحمت آتی ہے؟ یہ فرشتوں کی شکل میں آتی ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں کی شکل میں آتی ہے. تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا آتے رہتے ہیں، ایمان والوں کے قلوب پر آتے رہتے ہیں، سارا دن آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ فرشتے جو ہیں وہ سارا دن جو ہے نا وہ ان کی باقاعدہ ٹیمز جو ہیں وہ اترتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی دو ٹیمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک ٹیم جو ہے وہ دن کے وقت رہتی ہے دنیا والوں پر. ٹھیک ہے نا، یعنی ہر علاقے کا ظاہر ہے دن الگ ہوتا ہے رات الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جب آپ جیسے جیسے موو ہوتے جاتے ہیں تو ہوتا ہے نا یہ ٹائم جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، رائٹ، سورج کے نکلنے کا ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے موو ہوتا رہتا ہے. تو جس جگہ پر دن ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ فرشتے، دن والے فرشتے موجود ہوتے ہیں. اوکے، اچھا، یہ فرشتے رات میں نہیں ہوتے بلکہ یہ فرشتے جو ہیں وہ دن ختم ہونے کے وقت اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں، واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس وقت یہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں نا تو اسی وقت رات والے فرشتے جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس وقت یہ اوپر جا رہے ہیں اسی وقت وہ نیچے آ رہے ہیں. تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا شام کا وقت، کہ جس کے اندر کے دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور رات اب شروع ہونے والی ہوتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ واپس جانے والے فرشتے اور نئے آنے والے فرشتے، ٹھیک ہے، یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں. یہ جو جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے جمع ہونے سے کیا ہوتا ہے، جو رحمت دن میں تھی نا یہ رحمت ڈبل ہو جاتی ہے، اور جو رحمت رات میں ہونی تھی وہ رحمت ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ رات والے فرشتے بھی موجود ہیں، دن والے فرشتے بھی موجود ہیں. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے نا ان کا اجتماع ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، جو شام کا وقت ہوتا ہے اس میں اجتماع ہو جاتا ہے ان فرشتوں کا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب رات والے فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں، وہ کس وقت واپس جا رہے ہوتے ہیں، صبح کے وقت واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور دن کے فرشتے جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز ٹیک اوور، ان سے ڈیوٹیز ٹیک اوور کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں اجتماع ہو جاتا ہے فرشتوں کا. تو ان کی تعداد جتنی دن میں ہونی تھی ان سے ڈبل ہو جاتی ہے. کیونکہ ان کی تعداد ڈبل ہو جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے اللہ کی رحمت، کیونکہ یہ اس کا وسیلہ ہے، واسطہ ہے اللہ کی رحمت کا، تو یہ رحمت بھی ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس ان دو اوقات کی خصوصی برکت کا کی وجہ. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جو سب سے یعنی بینیفیشل ٹائم ہے ذکر کرنے کا، خاص طور، کیونکہ وہ والا ذکر، قلبی ذکر جس کو کہتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنا، وہ تو آپ نے 24 گھنٹے کرنا ہے. تو اب کون سے والے ذکر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ لسانی ذکر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی تسبیحات کرنے کے لیے جو آپ بیٹھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جو آپ بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے زیادہ یعنی پروڈکٹیو اور سب سے زیادہ جو ہے وہ یعنی ریزلٹس پروڈیوس کرنے والے جو ٹائم ہے نا، وہ یہ دو ٹائمز ہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے، کوئی سوال؟ نہیں، چلیں کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.